सरस्वती।
तो नारायण नारायण की बात क्या, सालग्राम तक जितने तत्व हैं सब एक ही तत्व हैं, सच्चिदानंद हैं, इस विषय में अंतर नहीं है। किंतु रसेन उत्कृष्टते, शक्ति के और रस के प्राकट्य के तारतम्य से भगवान के प्रकाशों में तारतम्य होता है। नारायण वही है, बात तो ठीक है, किंतु देखो समस्त अवतारों के भी अवतारी स्वयं कृष्ण है। तुम्हारे जो इष्ट देव हैं वो हैं। लक्ष्मी जी नहीं सुनने पाए ये बात, अन्यथा ये बिगड़ जाएंगी, इसलिए तुमको अलग लेकर के समझा रहा हूं। उन्होंने बतलाया जी भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक ऐश्वर्य पर और एक माधुर्य पर। वैसे उनके नाम भी ऐश्वर्य पर और माधुर्य पर। माधुर्य पर माने क्या, भगवत्ता प्रकाशित हो और न हो, ऐश्वर्य प्रकाशित हो और न हो, इसे कोई आता ना जाता है। किंतु नरलीला के अनुरूप में उनकी समस्त कार्यकलाप होते हैं तो उसको कहते हैं माधुर्य। ऐश्वर्य प्रकटित तो गोवर्धन धारण में भी है, ब्रह्मा जी को उन्होंने लाखों रूपों में दर्शन दिया, अगासुर को बकासुर को कंस का मारना, ये सब ऐश्वर्य से पूर्ण है। किंतु नरलीला को अतिक्रम नहीं किया, गोवर्धन को धारण किया कृष्ण ने, कौन से कृष्ण ने, वही छोटे से 7 वर्ष के कृष्ण ने, उस समय धोती भी पहनने नहीं आती ठीक से, पहले 9-10 वर्ष के बच्चे धोती तोती नहीं पहनते थे, अब जन्म लेते ही पहना देते हैं। तो उस समय में 7 वर्ष की उम्र और उन्होंने धारण कर लिया गोवर्धन, साधारण गोवर्धन 14 मील ऐसे और ना जाने कितने सैकड़ों मील ऊपर उनको धारण कर लिया। ब्रह्मा जी को एक साथ में कितने लाखों रूप दर्शन करा दिए नारायण, तृण से लेकर के जो कुछ था सभी नारायणमय बन गया। और फिर वही एक कृष्ण मत बंसी बजाते हुए हाथों में कवल भेद विषाण लेकर के, और दधी हाथ में खा नहीं रहे, मुख सूखा हुआ और खोजे कहां गए बछड़े, कहां गए ग्वाल बाल, एकदम अबोध बच्चे जैसे डर करके मुख सूख गया, पानी से प्यास गला सूख गया और खोज रहे, ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला। कितने हजार हाथियों का बल रखने वाला कंस को ऐसे खींच करके गिरा करके उस पर कूद गए, मर गए। अगासुर को मारने के लिए कोई बड़ा रूप धारण नहीं किया, कोई अलौकिक चीज नहीं दिखलाई, बस वो मुख में ले लिया तो प्रवेश कर गए। अब बस इतने में मर गया तो वो क्या करें, उतना आई और दूध पिलाया और दूध पीते पीते वो मर गई तो वो क्या करें, बस ऐसे ही सब उनकी लीलाएं ही ऐसे नर लीला कहते करते, इसको कहते हैं माधुरी। और जहां पर नर लीला का अतिक्रम करके उनकी लीलाएं होती हैं अलौकिक, जिसको मनुष्य नहीं कर सकता उसको कहते हैं। तो इनका वैसा रूप है, तुम इनसे ऐसी आशा नहीं कर सकता, जिनके साथ में कंधे पर बैठ करके खेलेगा दौड़ेगा सखा मानेगा, ये इनकी आशा। और खोल करके सब कहना कर दिया। क्रमशः नारद जी ने उनको उपदेश दिया, अभी तुमने जो देखा बैकुंठ में, पेड़ देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, कुछ जानवर भी देख रहे हो, क्या जानवर देख रहे हो, रीछ हैं, बंदर हैं, घोड़े हैं, घोड़ा कहाँ है, है ग्रीवा भगवान ही है, और सब जो देख रहे हो ये सब सच्चिदानंद रूप हैं। और यहाँ पर जितने जो लोग आए जो देखा तुमने द्वार से, सब सच्चिदानंद, क्यों ऐसा रूप धारण किए हुए हैं, प्रभु की सेवा के लिए। और जिस जिस में उनकी सिद्धि जैसी हुई है और उनकी वैसी रुचि रही थी उनको, जैसे कागभूषुंडी जी कागभूषुंडी से, हनुमान जी जटायु क्या होंगे, जब मैं जटायु ही रहूंगा, गरुड़ जीव उसी रूप, किंतु है मुक्त लोग सबको वैसे ही समझ। तो ये वृंदावन में जो झाड़ियां हैं और पेड़ पौधे ये क्या हैं? तो हम दातुन तोड़ते हैं और गड़बड़ी करते हैं, और ये इतने मनुष्य देख रहे हैं, ये क्या है? यही पर गड़बड़ी है, वहीं पर थोड़ा सा विचार है। हम बद्ध जीव है ना, इसलिए माया के जाल के ऊपर में हम सब कुछ देख रहे हैं चिन में सभी यत्किंचित तृण गुल कीकट मुखम गोष्ठे समस्तं हित सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम परम शास्त्रे रे मुहुर मुहुर निष्ठंग तंग जांच्या ब्रह्मादेर विशस्पियन ततो सर्वम मया इदम। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं घास यहाँ बन जाऊं। उद्धव जी क्या कहते हैं? आशाम हो चरण रे वृंदावने गुलम लताओ सदीना, गुलम और लसत बन जाऊं। यहाँ के पेड़ पौधे जितने हैं ये सब ऋषि महर्षि भजन कर रहे हैं, और रिक्शा वाला क्या कर रहा है? वो साधन भजन करके वैसा वो सचमुच में मुक्त है ना बद्ध है? बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये क्या चीजें हैं? मारामारी कर रहे हैं, कोई कुछ गंदी बातें कर रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कुछ मारामारी करते हैं, पैसा चोरी कर लेते हैं। यहां तक कि पंडों का देखो, पैसा ले लेंगे और गाली भी देंगे, सब कुछ हड़प करके अब बाहर कर देंगे, श्रद्धा भी नष्ट। अब इनको सच्चिदानंद माना जाए ना क्या माना जाए? इसलिए इन्हीं के लिए कहा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, बतलाया क्या बतलाया? ये वृंदावन भूमि ठीक है, किंतु इसका भी जो स्वरूप है तीन स्वरूप है। एक है प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश, और एक
दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान प्रकाश,
ये दृश्यमान प्रकाश। अभी दृश्यमान प्रकाश में बहुत तरह के लोग इसमें आए हैं, वो जाल के ऊपर में है। लड़ाई झगड़े करने वाले को सच्चिदानंद समझो, भगवत विरोधी जो चिंता स्रोत वाले हैं, यहाँ तक यहाँ पर साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं, सिद्ध सिद्ध हैं, किंतु वृक्षलता इत्यादि जितने भी हैं, गायों तक को भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी कहते थे ये धाम की गायें, ये कुकुर क्या हैं? धाम के कुत्ते हैं। तभी उनका सौभाग्य है जो यहाँ पर हैं, और जो भजन करने वाले हैं उसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, उनके लिए उचित सम्मान दो, ब्राह्मणों को उचित सम्मान दो, और इसमें अपने स्व संप्रदाय के इस भावना वाले जो हैं उनको क्या करो? प्राण के समान उनको मानो, और उनमें भी अब सिद्ध लोगों का तो देखना बड़ा मुश्किल, कहाँ ना जाने किस रूप में है, समझ नहीं। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं ये सभी सच्चिदानंद हैं, अपने अपनी इच्छा से या भगवान की कृपा से उनको ये सब शरीर दिया है। जसोदा मैया बद्ध हैं कि मुक्त हैं? वो बद्ध भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है, वो क्या है? जैसे कृष्ण है वैसे वो है। श्रीमती राधिका गोपियां इत्यादि उनको शंखचूर भेड़ बकरी की तरफ में हाँक करके ले जा रहा है, ये क्या है?
जोग माया,
ये जोग माया का ऐसी दिखा रहे हैं। वहां पर शंखचूर क्या है? उतना इत्यादि कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता, वो कैसे? जोग माया की इच्छा से वो प्रवेश करके ऐसा हो रहा है। इसलिए सभी लोग उनके सब लोग सच्चिदानंद में हैं और अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। जितने भगवत स्वरूप हैं इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, जितने भी शालग्राम पर 24 लीला बता और मन्मंतरा अवतार इत्यादि लीला अवतार गुणावतार सभी प्रभु के ही प्रकाश हैं, किंतु प्रकाश का तारतम्य है, सभी एक नहीं है। चंद्र तो एक ही है, किंतु द्वितीया को यदि पूर्णिमा कहो तो ये गलत है, किंतु चंद्र की दृष्टि से सभी चंद्र की उसमें कला ही नहीं है, वो सभी तो एक ही है किंतु दिखने में ऐसा होता है। ऐसे ही प्रभु के समस्त अवतारों को समझो, ऐसा नहीं समझो जे कृष्ण सबसे बढ़ करके हैं और बेकार सब हैं, अवज्ञा हो जाएगी। उच्च सम्मान देते हुए चलना चाहिए। ये यदि नारायण को देख करके अवज्ञा करते तो क्या होता है, भक्ति नष्ट हो जाती। इसलिए शालग्राम को भी या कोशी का तरह का यदि भगवान का पूजक है, अर्चक है, भगवान का किसी रूप में भजन करता है, उसकी अवज्ञा निंदा ये सब मत करो। सबको ये काली क्या है, काली राधा जी से संबंधित है कि नहीं, छाया होने पर भी उन्हीं की तो छाया है। और ये राधा जी क्या है, शक्ति शक्ति मथोर अभेद, एक ही तो है, तो वो सब उनसे अभेद हुआ कि नहीं। इसलिए अचिंत भेद अभेद सिद्धांत के ऊपर में सभी जो कुछ है उसके अंतर है। इसलिए किसी की निंदा अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। और इसमें उन्होंने बतलाया कृष्ण में अधिक रस और शक्ति प्रकाशित है, इसलिए कृष्ण ही सर्व अवतारों के अवतारी हैं। तुम्हारे जो मदन गोपाल हैं वो साधारण नहीं है, इन सबके ही मूल अवतारी हैं। देखो तुम्हारी यहां पर तृष्णा नहीं मिटेगी, पासी में अयोध्या है, तुम अयोध्या में अब जाओ। कहे मैं कैसे जाऊं, ये मना करेंगे तो नहीं नहीं ऐसा समझे मैंने ही नारायण ने हमको कहा ये जाओ इसको कहो और ये जाए, ये नारायण जी का ही आदेश है, क्योंकि नारायण और राम में तो कोई अंतर है नहीं, ये उसे अप्रसन्न नहीं होंगे। यदि कोई द्वारकाधीश का भजन करता है और सद्गुरु मिल गए तो द्वारकाधीश और रुक्मिणी और कृष्ण का ही भजन करेंगे, इसी पर अड़ा हुआ, नहीं तो हमारे वो रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत समझो। तुम आगे बढ़ोगे तो एक ही तत्व तो है, तुमको उसमें शक्ति संचरित करके सहायता दे करके तुमको वहां पर पहुंचा देंगे। इसलिए तुम यही समझो कि नारायण जी ने हमको भेजा है और मैं तुमसे कह रहा हूं ये तत्वता एक एक ही है, इसलिए तुम वहां पर जाओ, एक बात करो ठीक है। नारद जी तो है, नारद जी यहां पर भेज रहे हैं, क्यों, उनके परिकर हैं नारायण के, इसलिए ये भेज रहे हैं। किंतु वहां पर ऐसे मत जाना श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद कृष्ण, ये मत कहना वहां पर। तुम क्या कहना, हे कमल नयन, हे सीतापते, हे लक्ष्मण के अनुज अग्रज और भरत के अग्रज, हे सीतानाथ कमल नयन, हे रघुपते, हे हनुमान के इष्ट देव, आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, बस ये कहते भेजा। उन्होंने कहा ये कैसे होगा, अपने इष्ट देव को छोड़ करके मैं नाम दूसरों का क्यों करूं, हैं? यदि हमको कहे जैसे आप कहिए तो वो क्या है ना, श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण गोपाल गोविंद हरे मुरारे हे नाथ अथवा नारायण नारायण श्रीमन नारायण, ये मैं नहीं कर सकता, हमारा हमारा ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। काम बनाना है ना, काम बनाना, कैसे काम बनेगा, तुमको उसी रास्ते में जाना है, रास्ता तो वही है ना, इसलिए रास्ते से तुमको जाना, अपना काम तुमको बनाना है, गोपाल देव के यहाँ जाना है, इसलिए दिखलाने के लिए अपना काम बनाने के लिए तब तक तुम ये पाठ करो, ये जो तुमको बतला रहा है, और फिर वो उस सीमा को पार कर जाएगा तब फिर वो नाम लेगा। इसलिए तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारी इष्ट की निष्ठा खराब नहीं हो जाएगी, इसलिए तुम आगे बढ़ो। ऐसा कह करके उनको कहा जैसे तुम ये मंत्र करो, बस मंत्र नहीं बन रहा, वो हरिनाम राम संबंधी कीर्तन करने लगे। हे लक्ष्मण ज्येष्ठ और हे सीतापते, हे हनुमत, इस प्रकार से कहते हुए वो कीर्तन कर रहे। और कीर्तन करते हुए जब ही सीमा पार किया तब देखा जब बंदर वहां पर भरे हुए हैं भालू, इनको पकड़ लिया, इनकी बंसी छीन ली और छीन करके और इनको ले चलने लगे। और कहीं जैसे यहां पर ऐसे आदमी नहीं जाता बंसी और ये ग्वारिया का वेश लेकर, या तो बंदर हो जाओ यहां हम लोगों के दल में मिल जाओ, और नहीं तो तुम सुंदर स्वरूप के त्रिविज बन जाओ, और जैसा यहां पर अच्छे श्रृंगार करके लोग रहते हैं ऐसा बन। किंतु उस पर राजी नहीं हुए, बैकुंठ में भी राजी हुए, यहां भी बंसी उंसी ले ली। इतने में देखा जी हनुमान जी कूद करके यहां पर पहुंच गए, भगवान ने उनको भेजा, फिर बंसी उनकी छीन करके उन लोगों से फिर इसको दिला दी, और ये बंसी लेकर के और फिर ये धीरे 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 आगे बढ़े। अयोध्या में वहां गए, देखा रामचंद्र जी नारायण से भी अत्यंत सुंदर सुंदर धनुष बाण लिए हुए हैं, राज वेश में है, उनसे भी अधिक सुंदर और दयालु, लीला परायण, और लक्ष्मी जैसे भी परम सुंदरी सीता जी उनके बाएं तरफ में, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी खड़े हुए, कोई चामर के वजन, कोई उच्च झुला रहे, कोई छत्र धारण किए, शत्रुघ्न जी छत्र धारण किए हुए हैं, एक तरफ में लक्ष्मण जी और एक तरफ में भरत जी, एक चामर एक पंखा झुला रहे हैं, और नीचे में हनुमान जी बैठे हैं गदा लेकर के और उनके पैरों को पलोट रहे हैं। देखते ही राम पंचायत को देखा और उनके चरणों में गिरे, यही ये उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े, तभी हनुमान जी दौड़ करके कूद करके उनके पास आ गए और उनको लेकर के इनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुका दिया। देखा ये सिर नहीं झुकाएगा, ये उनसे गले से मिलने के लिए जाएगा, और हे गोपाल करने लगा, वो तो बतला तो दिया था
भूल गए,
और वो भूल गए और गोपाल 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 करने लगे। हनुमान जी ने उनको पीछे हटा दिया और उनके जो परिकर थे उनको परामर्श दिए, यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, भूमंडल नहीं है ये, कहाँ ये रामचंद्र जी पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, और इनको तुम ग्वारिया बनाता है, और ग्वाल ग्वार कहते ये गैया चराने थोड़े जाते हैं, ये गैया नहीं चराते, और इनसे ऐसे नहीं मिलना चाहिए। अरे सखा तो सुग्रीव भी हैं, सखा तो विभीषण जी भी हैं, सखा इनके बहुत जहां जाते हैं अपनी सखा बना लेते हैं, वो निषाद निषाद राज उसको भी अपना सखा बना लिया, सखा कहते हैं बात के लिए किंतु सखा नहीं, सुग्रीव विभीषण ये सब अग्नि के साक्षी देकर के सखा बनाए गए, किंतु कोई भी यथार्थतः में सखा है इनका? लक्ष्मण जी भैया हैं, भरत जी भाई हैं, शत्रुघ्न जी भैया हैं, पत्नी है सीता जी, किंतु एक आसन पर नहीं नहीं बैठ सकते, जूठा कोई नहीं खिलाएगा, और वो लोग सखा नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, राम कहेंगे सखा, विभीषण कहे हिम्मत है उनकी, ये कहेंगे सखा ये नहीं कह सकते, प्रभु सब समय संबोधन करते। हनुमान जी का वैसा ही, लक्ष्मण जी का, भरत जी का ऐसा, तो और लोगों की तो बात करो, वहां पर सभी रामचंद्र जी को मर्यादा देंगे और रामचंद्र भी सबको मर्यादा देंगे, मर्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते कोई। इसी तरह से वहां पर हनुमान जी इनको समझा रहे हैं, सखा होने से भी सखा नहीं, इनकी मैया है कि नहीं? कौशल्या जी मैया है। कैसी मैया है? ऐश्वर्य भाव संपन्न है, कभी रामचंद्र जी का कान गर्म किया हो और इन्होंने कभी भी कोई औद्धत्य प्रकाश राम ने किया? बचपन से लेकर के कभी नहीं, सब समय मर्यादा में भी रहे, इसलिए कोई जरूरत नहीं हुई इनको। और कृष्ण बचपन में चोरी करना, किसी को चोज ले लेना, मक्खन ले लेना, सबके साथ में जिससे मिलेंगे उसे छेड़खानी, कभी कांटे पर चढ़ेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी बैल के मुख में हाथ लगा देंगे, सांड का सिंह पकड़ लेंगे, सर्पों को पकड़ लेंगे। रामचंद्र जी ये सब नहीं करेंगे, वो अधिक से अधिक मालपुआ लेकर के खाएंगे और काग भुसुंडी जी को ये सब लीलाएं, मर्यादा में रह करके सब उनकी लीलाएं। तुम मर्यादा का भंग मत करना, इनको सखा सखा मत कहना और निकट में मत जाना, बस इसलिए चरणों को झुका करके उनको प्रणाम कराया, हनुमान जी को सौंप दिया इनको रामचंद्र जी। अब बड़े प्रेम के साथ में इनको सांत्वना दी, देखा जी अब हमको कहीं नहीं जाना है, इतने प्रेम से प्रभु हमसे आलाप कर रहे हैं, अब इसको हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, मन मत जाओ और भूल जाओ, तुम इन्हीं के साथ में रह करके इनकी सेवा करो। रहने लगा, चित्त संतुष्टि नहीं हुई। हनुमान जी ने बहुत चेष्टा की, बहुत तत्व बोध कराया, किंतु इनके अंदर में जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं। तो एक दिन हनुमान जी को बुलाया, रामचंद्र जी ने कहा जी यहाँ पर ये ठीक नहीं रहेगा, अरे हम जो द्वारकापुरी में हैं वहाँ पर ले जाओ इसको। तो वहाँ जी मैं कैसे जाऊँ द्वारकापुरी, द्वारकापुरी से इनका संबंध नहीं है, ऐसा कोई राम का परिकर होना चाहिए जो राम के साथ में संपर्क हो और कृष्ण के साथ में संपर्क हो, आप लोग बतलाइए तो खोजिए।
जम्बुवान जी है, राम के परिकर कृष्ण के ससुर।
जम्बुवान से होगा काम, और किसी से काम नहीं होगा, जम्बुवान जी कृष्ण के ससुर हैं, है ना, अयोध्या राम के सेवक हैं, सुग्रीव जी के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और खूब गणमान्य है ये। अपनी युवावस्था में जब थे तो बामन जीव जी अपना पैर फैलाया, एक पैर यहाँ और दूसरा पैर भोर भुआ सह महाजन तपस्त्य तक जबकि ले गए और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चन करने लगे दो एक मिनट में, इतने में उन्होंने पृथ्वी की 14 बार परिक्रमा, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर। एक बात हनुमान जी से करे, हनुमान मैं युवक जब था तो ऐसे, और तुम इसको पार नहीं कर सकता, अब मैं बूढ़ा हो गया, पार तो कर जाऊंगा किंतु आपिस आने में हमको संदेह। क्यों संदेह है, संदेह क्यों, अब बूढ़ा हो गया ना, तो वहां से उड़ करके नहीं आ सकते, ऐसा नहीं, वहां जाकर के रावण से कुछ विवाद हो गया और मैं बूढ़ा हूं इसलिए मुझको डर है और मेरे हाथ से उसकी मूर्ति नहीं लिखी, मैं कहीं उलझ गया और गड़बड़ हो गया इसलिए मैं नहीं जाऊँ, इसलिए तुमको ही जाना, ऐसे जामवान है। तो जामवान से राम से भी संपर्क है, मित्रता जब हुई ना दोनों की सुग्रीव की तो अग्नि जलाई गई और साक्षी कौन रहे, हनुमान जी जामवान और उनके दो चार जो परिकर थे, इसलिए हनुमान जी ने जामवान को बुला लिया, रामचंद्र जी ने उनको आदेश दिया तुम एक बात करो, इनको लेकर के तुम अपने जमाई के पास जाओ और उनसे मिला दो, नहीं तो यहां पर इसकी इच्छा तृप्ति नहीं होगी। वो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इनको लिया बड़े प्यार के साथ में और इनको रास्ता दिखाते हुए। अब वहां पर क्या हुआ अब आगे बतलाए, जब ये कल परसों ये समाप्त होगी, कल कौन सा दिन है, परसों मंगलवार है, कौन सी तिथि है, अमावस्या तो आज है, तो ठीक है, तो दोज को या तृत को मैं बतला दूंगा, जब ये समाप्त होगा तब हम लोग इसकी पूजा और समाप्त इसको करेंगे। आभिहीना पराधलक्ष्यै चित्वास्य कामादितरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं रवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमामृतम्।
अयोध्या में पहुँचे थे, जम भगवान के साथ में, जामवंत जी के साथ में उनको द्वारका भेजा गया। वहाँ पर जब गए तो द्वारकापुरी के सीमा पर ही समुद्र के पास में जितने जादव बालक थे वो सब खेल रहे हैं। उनके साथ में जादवों के जो पुरोहित गर्गाचार्य इत्यादि के जो लड़के हैं ब्राह्मणों के, वो लोग भी उनके साथ में एक समान खेल रहे हैं। उनको परस्पर खेलते हुए देख करके मुग्ध हो गए। बस देह की शरीर की शुद्ध बुद्धि उनकी भूल गई। फिर ब्राह्मण और उन बालकों ने इसको देखा जा रही है, ये तो ब्रजभूमि से आया है, कुछ ममत्व इनके प्रति हुआ क्योंकि एक ही वंश के हैं। गोप लोग और जादव लोग करीब करीब एक ही वंश के हैं, थोड़ा सा ये उन्नत हैं और वो थोड़े से निम्न श्रेणी के हैं, किंतु भाई इत्यादि लगते ही हैं। बस उसको पकड़ लिया, पकड़ करके राजभवन की तरफ में ले गए। वहाँ पर जब गए तो सीधा वो बच्चे तो प्रभु से तो डरते नहीं, एकदम सीधा राजभवन में लेकर के और सभा में पहुँचा दिया। और वहाँ पर जो देखा तो वो स्तंभित होकर के खड़े होकर के आज पहली बार अपने इष्ट देव को दर्शन। भले ही जा रहा है ये बड़े उम्र के हैं किंतु वही हैं। उन्होंने देखा बड़ी सभा लगी हुई है, सुधर्मा सभा है, और सुधर्मा सभा में राज राजेश्वर की भांति कृष्ण बैठे हैं। उनके दाहिने तरफ में वसुदेव जी अक्रूर और प्रपूज्य गर्गाचार्य इत्यादि ब्राह्मण लोग बैठे हैं और भी लोग सब बैठे हैं, और बाएं तरफ में बलदेव जी भी गरी हैं दाहिने, माने गुरुजन लोग सब, और बाएं तरफ में उद्धव जी हैं, गद हैं, गद माने उनके छोटे भैया गदाग्रज गद बैठे हैं, और सेनापति बैठे हैं कृतवर्मा, और भी इनके समकक्ष जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर रूप में सजे धजे रूप में ये सब लोग बैठे हैं। इन दोनों के आगे में उग्रसेन जी हैं, उग्रसेन महाराज, और उद्धव जी इनके पैर पलट करके बीच बीच में कान में कुछ बोलते और सुनते हैं, मुस्कुराते हैं कृष्ण उनकी वार्तालाप को सुन करके, और कभी कभी कृष्ण उनके कान में कुछ पूछते हैं तो वो बतला रहे हैं, और उनके पैर भी पलट रहे हैं। और ऋषि महर्षि लोग उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, और उनमें वहाँ पर कुछ राज्यसभा में हंसाने वाले लोग भी होते हैं, कोई स्तव स्तुति करने वाले होते हैं, बंदी लोग होते हैं,
ये सब लोग कृष्ण का अनुरंजन कर रहे हैं, उसको कृष्ण को देख करके दुभिज रूप में देखा, दुभिज उनका शरीर था, बड़ा सुंदर, दूर से देखते ही हमें वो पहचान गए प्रभु, और वहीं से सिंहासन से उतर करके हमारी तरफ में आने लगे। किंतु उद्धव जी बड़े चतुर हैं, वो दौड़ करके आकर हमें पकड़ लिए और पकड़ करके प्रभु के चरणों में हमें गिरा दिया। मेरी इच्छा तो गिरने की नहीं थी चरणों में, किंतु उन्होंने गिरा दिया। तो कृष्ण ने अपने हाथों को फिर आरम्भ किया उनके पीठ पर, सिर पर, बड़े प्यार के साथ। मैंने कहा जी आज तक ये लाड़ प्यार हमको कभी नहीं मिला, किसी के पास में नहीं, नारायण के पास में भी नहीं, आराम के पास में नहीं। और पूछा आने में कहीं अमंगल तो नहीं हुआ? अमंगल क्या है? बहुत अमंगल है, जीव भगवान के पास में जाएगा सहजी नहीं जा सकता, माया तरह तरह से उपद्रव खड़ा कर दे। माया का इतना बड़ा भारी बंधन है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसे जीव को बांध रखी है। तरह तरह की कामनाएं हैं, तरह तरह की ऐसी बातें हैं जो आकर्षित कर लेंगी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अतिरिक्त भी। तो ये सब चीजें जैसे स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे ही आप चले लौट आएंगे, सहज ही भजन करने देगा वहां पर कोई, भजन वहां की परिस्थिति भजन करने नहीं देगी। इतना ऐश्वर्य है, इतना वहां पर रूप रस गंध शब्द स्पर्श से नहीं भजन कर, इसे कोटि गुण सुख कहां, भूर्भुवस म जन तप सत्य और उससे भी अष्टावरणों में। और इससे भी अधिक सुख ब्रह्मलोक में, और उससे भी अधिक शिवलोक में। ये सुख लोग आकर्षण कर लेंगे, जाने नहीं देंगे भगवान के तरफ में। राम के औदार्य लीला में, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में जो प्रवेश कर गया है वो वहां से आगे नहीं निकल सकता। द्वारकापुरी के रस में जो भिजा हुआ है वो वहां नहीं प्रवेश कर सकता। जैसे उद्धव जी गए तो ब्रज में देखा, सब कुछ किया, किंतु ब्रज के परिकर नहीं बन सके, ये सब बाधाएं हैं। तो जीव के लिए बहुत ही बाधाएं। तो वही कह रहे मंगल पूर्वक तुम्हारा आना तो हुआ, कृष्ण का प्यार पा करके ये अपने को कृतार्थ समझाएंगे। फिर सब लोगों से प्रेम भरी बातें करके सभा का जब समय समाप्त हो गया तो इनके दोनों हाथों को पकड़ कर अपने हाथों में लेकर और उद्धव जी को पीछे रख करके ले आए अपने राजभवन। अंतपुर में देखा 16,000 महिषियां रोहिणी मैया को और देवकी मैया को आगे कर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। उन्होंने कृष्ण का बलदेव जी का मस्तक सूंघा और आशीर्वाद दे करके वहाँ से चली गई। फिर रानियों को छोड़ दिया, सत्यभामा रुक्मिणी प्रभृति रानियाँ सब कृष्ण की तरह तरह की परिचर्या में लग गई। इसके बाद में ये सब देख रहे हैं, अनुभव करना। जब कृष्ण वहां पर पलंग पर या सिंहासन पर बैठते हैं तो पासी में ये कृष्ण उनका हाथ पकड़ करके उनको पासी में बैठा दिया। इसके बाद में
क्रमशः भोजन का समय हुआ, देवकी जी रोहिणी मैया कृष्ण को कहा जी बेटा आप प्रसाद थोड़ा सा पालो, ये कहकर रानियों का आदेश दिया जी तुम लोग प्रसाद पलाओ। उस समय में उनके परिवार में जितने बच्चे थे वो सबको कृष्ण ने बुलाया, और ब्रज में जैसे भोजन करते हैं वैसे द्वारकापुर में बलदेव जी को आपने दाहिने तरफ में बैठा दिया और सब लोगों को जथा जी को बैठाया, और वहाँ अपने पुत्र प्रद्युम्न जी को, अनिरुद्ध जी को, नाती को और सब शाम इत्यादि को और सब लोगों को एज ए बाल गोपाल सबको बैठा कर अपने से प्रवेशन करने के लिए। उस समय में फिर रानियों ने आकर के सत्यभामा जी और ये सब लोगों ने मिल करके इनको बैठाया, और सबको ये सब किस लिए करते हैं, ब्रज की याद के, ब्रज का भाव को स्मरण करने के लिए करते हैं। उस समय में भोजन के पश्चात में उद्धव जी देखा जब प्रभु तभी शाम करेंगे, इसलिए इनको चुपनी चुपड़ी बातें कर करके उनका मन बहला करके अपने साथ में ले आए, उनको वहाँ नहीं रहने दिया। ये बुरा भी माने न, और उद्धव जी कहे कि हमारे पास में तुम चलो वहीं पर विश्राम करना और वहीं पर रहना, बीच बीच में हम दर्शन करने जब आते हैं तो तुम भी आ जाना। रानियों के साथ में कृष्ण के साथ में ये नहीं रह सकते, न उद्धव रहेंगे न बलदेव जी रहेंगे न कोई रहेगा, इसलिए उनको चलाकी चतुराई से वहाँ से निकाल लिए। यहाँ आकर के उनसे बातें चीतें होती, कभी कभी दर्शन करने जाते। एक समय में जातुओं के लड़कों ने सब ने मिल करके इनको पकड़ लिए, बोले जैसे तुम हमारे साथ में यहाँ रहता है, हमारे जैसा भाव होना चाहिए, जादो बालकों जैसा, यहाँ पर बंसी रखने की जरूरत नहीं और मलिन वेश में तू रहता है, ऐसा मान लीजिए हम लोग क्षत्रिय है ना और तुम गोपालक जैसा एक नीचे हम लोगों से, इसलिए हम लोगों जैसा बनो, हमारे कपड़े तुम पहनो और हम लोगों जैसा रह करके कृष्ण की सेवा करो, यहाँ उस तरह से नहीं रहा जाता, देखता नहीं है, और इनको भी संकोच लग रहा है। क्या संकोच लगता है, कहीं क्षत्रिय राजकुमार कितने मड़ी मुक्ताओं से भरे हुए आभूषण मोर और मुकुट टुकुट ये सब फाट बाट से रहते हैं और मैं दिनहीन उनके सामने बैठ नहीं सकता, इनको लज्जा लगती है, घुटनों के ऊपर तक कपड़े और दिनहीन वेश, गुंजा माला कहाँ उनकी मणि रत्नों से ये सखी है, इसलिए खुद उनमें बैठने में उनको कुछ लज्जा लगती है, किंतु दिन ही वेश में रहते, उन लोगों के बहुत कहने पर भी अपना वेश नहीं छोड़ा, क्योंकि ब्रज वेश ब्रज का भाव इसके अनुकूल है, द्वारका वालों का उसके अनुकूल नहीं है। असल चीज है यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को अपने सद्बंधु की भावना से देखे और सद्बंधु की तरफ में उनमें प्रीति रखे तो ब्रज के कृष्ण मिल सकते। सद्बंधु माने क्या, ये मेरे मैया हैं, ये बाप हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये मेरे भैया हैं, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे प्रियतम हैं, ये सद्बंधु का भाव है। बलदेव जी जैसे भी हैं, मथुरा द्वारका आने पर या मथुरा आने पर कृष्ण के प्रति परस्पर गौरव हो जाएगा, गौरव का भाव आएगा, ये बड़े हैं मैं छोटा हूँ, या कृष्ण समझे हमारे बड़े भैया हैं, अरे उधर के दिए आज दिले उधर के बड़े भैया हैं, और जादव जितने लड़के हैं कृष्ण में ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पितामह हैं, इस प्रकार का भाव
और अधिकांश लोगों का उनका चतुर्भुज रूप देकर के ये भगवान है ऐसा भाव, सद्बंधु नहीं होगा। इसलिए नारद जी ने पहले भी कहा था और पीछे आगे बतलाएंगे, यदि ब्रज का भाव लाना है तो कृष्ण को अपना प्रेमी सद्बंधु जानकर उनके साथ में प्रीति रखो। जब तक सद्बंधु का भाव नहीं आएगा तब तक ब्रज की प्रीति नहीं आ सकती। इसमें भी सद्बंधु में भी सबसे श्रेष्ठ सखा का भाव, उससे भी सद्बंधु का भाव पुत्र, मैं उसकी मैया और पिता हूँ, और इससे भी गोपियों का कृष्ण के प्रति जो हमारे बल्लभ हैं, गोपीजन बल्लभ हैं, ये भाव सर्वोत्तम है। नारद जी इतने में एक दिन अपना वेश नहीं छोड़ा, एक दिन नारद जी अभी उद्धव जी के साथ में ये आ रहे हैं, कोई बगीचा था उसमें नारद जी हठात उपस्थित थे। नारद जी को देख करके उद्धव जी ने और इन दोनों ने प्रणाम किया। इसके बाद में नारद जी ने आशीर्वाद दिया दोनों को, किंतु हिचक करके, हिचक ना मैंने इच्छा नहीं है तो भी लोक रीति से कर रहे हैं। नारद जी समझ रहे हैं कि ये क्या है, किंतु ये अभी नहीं समझ रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि बैकुंठ में, बैकुंठ से ऊपर, द्वारका बैकुंठ से ऊपर में है, वहां पर सबका शरीर सच्चिदानंदमय है, सत चित आनंद, सत माने नित्य सत्ता से, और वो कैसा, चित माने क्या, चिन्मय ज्ञान स्वरूप, वहां पर ज्ञान अबाध है, अबाध माने ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान वहां पर माने सभी समय तो वर्तमान है, भूत भविष्य वहां नहीं, भूत भविष्य यहाँ है और वर्तमान, तो वहां पर ज्ञान अबाध रीति से है, किंतु ये अबोध बने हुए हैं, ये भक्ति का लक्षण है। मालूम होता है जैसे मैं कुछ नहीं जानता, अबोध, नारद जी अबोध भी बने हुए हैं और उद्धव भी, किंतु ये सबसे अबोध बने हुए, वहां तो साधन तो है नहीं, वो सब सिद्ध भूमि है, तो भी ये अबोध बने हुए हैं, मैं कुछ नहीं जानता। नारद जी कह रहे हैं उसको देख करके, प्रणाम करते हुए देख करके बोलो जी, बड़े बड़े आश्चर्य की बात, दो चीज आश्चर्य है, एक तो आप में अबोध वाली भावना गई नहीं, इस बैकुंठ में भी बड़े आश्चर्य की बात, मैं कुछ नहीं जानता, जैसे देखा था पृथ्वी लोक में, जैसा देखा हमने ब्रह्मा जी के पास, जैसा देखा बैकुंठ में, जैसा देखा और जगह में, आपका अवबोधपन दूर ही नहीं हुआ, बड़े आश्चर्य की बात। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है जिसको अबोध रहता है, मूर्ख होता है। दूसरी बात, आपका स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, पहले जैसा स्वभाव था और वेश था वो कोई भी परिवर्तन नहीं, समय से बदलना चाहिए ना, किंतु कुछ भी नहीं, ये तो दो बड़ी विचित्र बातें देखता है। सचमुच में ये रो पड़े और उनके चरणों में गिर गए, सचमुच में मैं देखता हूँ यहाँ मैं कुछ नहीं जानता, आप कृपा करके हमें बतलाइए कि उनको शांति क्यों नहीं मिल रही। मैं यहाँ से यहाँ तक आया और मैं जानता हूँ कि इसे बढ़कर के कोई धाम नहीं, तब मुझको यहाँ पर द्वारका में आने पर भी और प्रभु का अपने ऊपर में इतना प्यार दे करके भी, और मुझको देखते हैं कि संतोष नहीं है, अशांत चित्त बना हुआ है, हमको संतुष्ट करने के लिए प्रभु कभी कभी
अपने पुत्र पौत्रों को गोपाल बालक सजा देते हैं और सभी बंसी बजाते हैं और खेल जैसे वहां पर करते हैं, गोचारण करते हैं, वैसे गायों को लेकर के चराने के लिए हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और उस समय मैं भी उनमें मिल जाता हूँ। इस प्रकार से बीच बीच में लीलाएं करते हैं हमको प्रसन्न करने को,
तो भी हमको आनंद नहीं आ रहा,
न जाने क्या मुझको हो गया, हमारा ये दुर्भाग्य है। आप कृपा करके, हमारे गुरु हैं, आप बतलाइए। नारद जी ने कहा जी अब फिर मत कहना जी गुरु हैं, कान उन्होंने पकड़े। उसने कहा जी आप ऐसी कृपा करें कि हमारी अभीष्ट प्राप्ति हो जाए, हमारा चित्त शांत हो जाए और मैं संतुष्ट हो सकूं, आप कृपा करके बतलाएं। उद्धव जी, नारद जी ने उद्धव जी की तरफ में देखा और कहा जी देखिए आप तो सब समय कृष्ण के पास में रहते हैं, आप इसको ऐसा कीजिए इसकी अभीष्ट सिद्धि हो, ऐसे उपदेश बतलाइए इसको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उद्धव जी हंसने लगे और हंस करके नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे ओह आप ऐसा कहते हैं, आप सब कुछ जानते हुए कहां मैं क्षत्रिय और ये कहां ब्रज का गोपाल, मैं ब्रज के गोपालों की महिमा देख करके आया हूं और आप मुझ क्षत्रिय को गुरु होकर के इसको उपदेश देने के लिए, क्षत्रिय कहीं गुरु होता है और मैं इसको उपदेश दूं। तो नारद जी हंसने कहा जी जब तुम्हारा भी ऐसा ही स्वभाव, यहाँ आकर के भी बैकुंठ से भी ऊपर में और तुम्हारा क्षत्रिय का अभिमान नहीं गया। तो उद्धव जी भी इनको पकड़ लिए और पकड़ करके कहने लगे हमारी बात क्या, हमारे जो प्रभु हैं उनको भी यहाँ पर जादव का अभिमान और वृंदावन में गोपाल का अभिमान नहीं जाता, हमको क्या कहें, आप ही कृपा करके इसको ऐसी कुछ बात।